मृणाल धवलम
श्वेत कमल के समान सफेद निहंतम पेशाब करता ईव
मानो
बुद्ध्यतम अत्यधिक डरा हुआ वेपमानम कांपता हुआ पदई के न एक ही पैर पर खड़ा सीदंतम डरा हुआ शुद्र तारितम शुद्र द्वारा मारे जाने से अनुवाद शास्त्र भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा किया गया। शिला प्रभुपाद की अनुवाद भाई कितना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो, वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। अनुवाद की पुनरावृत्ति करें। बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो, वह उस शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था। कलयुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत हैं, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण होगा। भले ही वे ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हों, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वांग्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे और कलयुग में धर्म रूपी निर्मल बैल को ही मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राजसत्ता को धर्म निरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे और वे साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम कर्मशः विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वह किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला है। ओम अज्ञान तिराम धस्य ज्ञान जन शनाकर चक्षुन्मितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा कमं वन्दे श्री गुरुदेवं पारमहंसं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संदर्भ चल रहा है कि महाराज परीक्षित अपने राज्य में सुख शांति का ब्यौरा लेने के लिए कि सब ठीक है, उनके राज्य में सब लोग सुखी हैं, सभी प्रजा सुखी है। प्रजा से अब मात्र मनुष्य नहीं होता है, थोड़ा साउंड काम कर देना चाहिए। एक साउंड आती है बात में कभी भी। थोड़ा स्पीकर करना, फेस भी उधर कर देना। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, अब तो मैं कह रहा था कि राजा का यह कर्तव्य है कि उसके शासन में सारी प्रजा, प्रजा का अर्थ यह होता है कि जिसने भी उस राज्य में जन्म लिया है। मात्र मनुष्य एक राज्य में जन्म नहीं लेते हैं, चौरासी लाख योनियों में जो भी जीव हैं, जो भी शरीर पाए उन सबको प्रजा कहा जाता है। तो ये राजा का वास्तविक कर्तव्य होता है कि वो देखे कि उसकी सारी की सारी प्रजा वास्तव में सुरक्षित है। तो इसी उद्देश्य से महाराज परीक्षित वास्तव में एक निरीक्षण करने के लिए अपने राज्य में निकले थे। तुमने पहले पढ़ा कि किस तरह से धर्म बैल के रूप में और पृथ्वी गाय के रूप में अपनी व्यथा एक दूसरे को सुना रहे थे। ये पिछले अध्याय में हो चुका है कि गाय की स्थिति क्या थी, बिल्कुल मरी हुई सूखी गाय पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रही है और बैल धर्म को। तो कलयुग अभी शुरू होने को है, भगवान कृष्ण अपने धाम जा चुके हैं, परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज को सारा राज्य सौंप करके और उन्होंने भी प्रस्थान कर दिया है। तो ये उस समय की स्थिति है। तो आज का जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, परीक्षित महाराज भ्रमण करते करते देखते हैं कि एक शूद्र बैल को पीट रहा है। इस अध्याय के पहले एक दो श्लोक में बैल की स्थिति का वर्णन है, अर्थात धर्म की वर्तमान में क्या स्थिति है, और तीसरे श्लोक में गाय की संक्षिप्त रूप में स्थिति के बारे में बताया गया कि गाय की क्या स्थिति है, अर्थात पृथ्वी की क्या स्थिति इस समय है, किस तरह का उसका भाव है। और चार श्लोक से आगे फिर कली, अर्थात कली की जो प्रोसाइडिंग डीटी है, जो भी कली का अधीक्षक देव है, वो और परीक्षित महाराज के बीच की बहुत सुंदर बातचीत है। तो आज के श्लोक में बैल का जब वर्णन कर रहे हैं तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि बैल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। तो धर्म वास्तव में बिल्कुल किसी भी तरह से जो शुद्ध धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो वास्तविक जो धर्म है, उस पर किसी भी तरह का कोई धब्बा या किसी भी तरह का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, बिल्कुल प्योर स्टेट होती है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे युग आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसी तरह से जब कलयुग आकर के पहुंचता है तो वो जो बिल्कुल सफेद बैल है उसकी स्थिति का यहाँ वर्णन जो किया जा रहा है, उसकी स्थिति ऐसे थी कि मान लो कि बिल्कुल डरा हुआ, एक पैर पर थरथरा है और इतना डरा हुआ है कि मान लो अभी पेशाब कर देगा। जैसे डर की जो सबसे उन्नत अवस्था हो सकती है कि बिना कंट्रोल के भी शरीर में से पेशाब या मल इत्यादि निकलने लगता है। शास्त्र में पिता का, गुरु का और राजा का कुछ कर्तव्य बताए हैं। इन तीनों का कर्तव्य ये शास्त्र में है कि उनके संरक्षण में जो भी है, पिता के संरक्षण में संतान रहती है, गुरु के संरक्षण में शिष्य रहता है, और राजा के संरक्षण में मुख्य रूप से मनुष्य जो थोड़े एडवांस होते हैं वो रहते हैं। तो ये कर्तव्य है इन तीनों का कि अपने संरक्षण में जो भी है उनका वास्तव में जन्म मृत्यु के चक्र से वो छुटकारा कराने की व्यवस्था करे, ये उसका कर्तव्य है। राजा कह दिया तो राजा से राजा का कर्तव्य भी साथ ही सम्मिलित है। राजा का अर्थ भोग से नहीं है, राजा का अर्थ मुख्य रूप से कर्तव्य है, जैसे कि वास्तव में उसको शास्त्र के अनुसार नियमों का पालन कराना है जनता से। इसलिए प्रायः जो सत्यनिष्ठ राजा रहते थे, जो वैदिक समय में जिनको राज ऋषि कहा जाता था, तो राज ऋषियों का यह कर्तव्य रहता था कि वो शास्त्र के आधार पर ये सुरक्षित करें, ये सुनिश्चित करें कि उनके संरक्षण में जितनी भी प्रजा है वो नियमों का प्रॉपर पालन कर रही है। कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण का पालन कर रहा है, ब्राह्मण के जो गुण है, ब्राह्मण के जो कर्म है उनका पालन कर रहा है, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रियों का पालन कर रहा है, उसी तरह का कर्म कर रहा है वैश्य वैश्यों का, शूद्र शूद्रों का, ये राजा का कर्तव्य था ये सुनिश्चित करना। तो जब तक शास्त्र में पारंगत नहीं रहता है कोई, तब तक वास्तव में वो जान नहीं पाएगा कि शास्त्र का सार क्या है, किस तरह से ये पालन करवाना है। इसलिए राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों के गाइडेंस में, उनकी देखरेख में वो शासन किया करते थे। ब्राह्मण डायरेक्टली शासन नहीं करते थे, लेकिन राजा इतने उनके चरणों में निमित्त रहते थे कि वो जानते थे कि जो ब्राह्मण इस समय मुझे एडवाइस करने वाले हैं, एक दो चार नहीं, पूरे के पूरे ब्राह्मणों की टीम रहती थी। कोई कोई विषय में पारंगत रहता था, कोई कोई विषय में पारंगत रहता था, तो उन सब ब्राह्मणों का एक एक ग्रुप वास्तव में राज ऋषि का मार्गदर्शन किया करता था, ताकि राजा अपने कर्तव्यों का पालन आगे कर सके, प्रजा से भी करा सके। और इस तरह से जो राजा वास्तव में पालन करता था, उस तरह के राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। भगवान का प्रतिनिधि कहा जाएगा तो कोई छोटी बात नहीं समझनी चाहिए। गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, तो गुरु के स्थान पर राजा को रखा जाता था कि वास्तव में राजा अपने संरक्षण में सभी आने वाली प्रजा का, मुख्य रूप से मनुष्य जो पालन कर सकते हैं, जो थोड़े एडवांस्ड है, इंटेलिजेंट है, जो धर्म के बारे में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसी तरह की स्थिति परीक्षित महाराज की भी थी। पूर्ण रूप से वैष्णव, पूर्ण रूप से वैष्णव ब्राह्मणों के संरक्षण में, उनकी गाइडेंस में वो पालन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या देख रहे हैं एक स्थान पर आकर के, कि एक शूद्र बैल को पीट रहा है। बैल को धर्म का प्रतिनिधि माना जाता है, या प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है। तो उस तरह का राज ऋषि जिसका बचपन से ही, या बचपन से पहले से ही, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही भगवान कृष्ण ने उनकी मां के गर्भ में रक्षा की थी, तो उस तरह की प्रवृत्ति, वैष्णव प्रवृत्ति जिस क्षत्रिय की है, उस क्षत्रिय के सामने अगर कोई बैल को पीट रहा है तो कितना क्रोध में वो तमतमा जाएगा। बिल्कुल कंट्रास्ट है आज की जो सिचुएशन है, बिल्कुल उसके अपोजिट है। एक बैल को देख करके, ये इस श्लोक में कोई बातचीत नहीं बताई गई है। इस श्लोक में जो परीक्षित महाराज ने देखा है उसको देखने का यह वर्णन है, कोई बातचीत नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है। सूत गोस्वामी स्थिति का ब्यौरा इस श्लोक में दे रहे हैं कि क्या उस समय हुआ। तीन श्लोक में परीक्षित महाराज ने क्या देखा कि चौथे श्लोक में वो क्या करने के लिए तैयार हो गए। तो पहले तीन श्लोक में वास्तव में वो उस सीन पर लेकर के जा रहे हैं सूत गोस्वामी, जहां पर परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि एक शूद्र राजा के वेश में और बैल को मार रहा है और गाय को पीट रहा है। और बैल की स्थिति क्या है कि वो एक पैर पर खड़ा है, उसके चारों पांव भी नहीं है। अगर बलशाली रहता, चारों पांव पर खड़ा रहता, तो फिर भी थोड़ा सा बात समझ में आती, असहाय अवस्था में पहले ही है। अगर मान लीजिए तीन पांव किसी पशु के टूटे हुए हों और उसको कोई मारे, तो कोई कितना निर्दयी से निर्दयी व्यक्ति भी इतना उत्साह नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां जो कली के जो अधिष्ठात्र देव हैं, कली देव जिसको कह सकते हैं, जिनके वास्तव में हम सब, जिनकी सत्ता में आते हैं, जो हम सबके वर्तमान में राजा हैं, उस समय इन राजा का वास्तव में राज्य अभिषेक होने की तैयारी हो रही है इस अध्याय में, तो कोई सहन नहीं कर सकता था। तो परीक्षित महाराज जैसे राजऋषि कैसे इस बात को सहन करते हैं। मैं बता रहा था कि वर्तमान में बिल्कुल अपोजिट स्थिति है, बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। ये बहुत पहले, कोई लाखों वर्ष पहले की बात नहीं है जो इस शास्त्र में कही जा रही है। कलयुग को शुरू हुए लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, तो 5000 वर्ष पहले एक राजा इंश्योर कर रहा था कि उसके प्रजा में कोई बैल को, गाय को छू ना दे, टच ना कर दे। कृपा जी यहां तात्पर्य में लिखते हैं कि वर्तमान के जो राजा हैं वो तो धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना कर रहे हैं। धर्म निरपेक्ष का अर्थ है कि हमसे आप अपेक्षा ना करें कि हम धर्म के बारे में कोई आपका मार्गदर्शन करेंगे, इसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं। ऐसे बोलते तो हैं कि सेकुलर स्टेट, कि हम किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देंगे या किसी भी रिलीजन का हम प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, जो करे यथपत तत्पत, जो जैसे करना चाहे सबको छूट है। कोई नया धर्म बनाना चाहता है या स्थापित धर्म में कोई परिवर्तन करना चाहता है, जो जिसकी इच्छा है वो कर सकता है। हम तो निरपेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। एक क्षत्रिय ऐसा कार्य नहीं कर सकता, उसको मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन क्योंकि शास्त्रों का मार्गदर्शन नहीं है और ब्राह्मणों जैसी बुद्धि देने वाला कोई नहीं, कैबिनेट में जो बैठे रहते हैं, सलाहकार जिसको बोलते हैं, वास्तव में सलाहकार उनसे बड़े दुष्ट, उनसे बड़े शूद्र होते हैं। तो मैं उस तरफ ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि हम वास्तव में भरे हुए इस तरह के समाचारों से कि समाज में आज क्या हो रहा है, तो कुछ बताने वाला नहीं है उसमें। सब लोग थके रहते हैं इस तरह का समाचार सुन करके। लेकिन आवश्यकता है वास्तव में भगवान के भक्त जैसे परीक्षित महाराज हैं, क्षत्रिय के स्थान पर हैं, उसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो अपने स्थान पर रह करके कुछ ना कुछ व्यवस्था में योगदान करें, इसकी पूर्ण आवश्यकता है। वास्तव में ये जो सीन है ये कोई सीन बहुत क्रिएटिव सीन नहीं है। अगर परीक्षित महाराज आज का सीन देख लें कि स्लॉटर हाउसेस में क्या होता है, ये तो क्षेत्र में, कॉमन एरिया में, जहां पर एक डंडे से पीटा जा रहा है, संदर्भ है। तो मैं वास्तव में थोड़ा बताना चाहता हूं कि आजकल स्लॉटर हाउसेस में किस तरह से जो हालत खराब होती है, शायद कुछ लोगों को पता हो। ये जो टैनरीज हैं, टैनरीज का मतलब होता है कि जहां पर चमड़ा निकाल करके उसको रिफाइन किया जाता है। तो मैं किसी से सुन रहा था कि कानपुर में जो बड़ी बड़ी टैनरीज हैं, प्रोसेस उनमें क्या होता है। अगर इस तरह का प्रोसेस अगर हम सुन लेंगे तो वास्तव में हृदय दहलने लगेगा। मैं ब्रीफ में बता देता हूं। सभी पशुओं को लाया जाता है जिनका आज दिन निश्चित होता है, उनको स्थान सबके बने रहते हैं कि ये पशु यहां खड़ा है, फिर कुछ दूरी पर दूसरा खड़ा है, फिर तीसरा खड़ा है। ऐसे उनको जो निश्चित, जो उनके खड़े करने के स्थान है वहां उनको खड़ा किया जाता है। उसके बाद एक मशीन आती है, वो एक पांव को अच्छे से जकड़ लेती है, दूसरी आती है वो दूसरे पांव को, तीसरे पांव को, चौथे पांव को, चारों पांव को अच्छे से मशीन आकर के जकड़ लेती है, बिल्कुल फिक्स हो जाता है, वो हिल नहीं सकता है पांव वहां से। उसके बाद जिस पोजीशन में वो खड़ा किया जाता है पशु, वो बिल्कुल ऐसे होता है कि चारों जो मशीनें हैं वो साइड से आकर के उसको बिल्कुल जकड़ लेते हैं, और उसके बाद ऊपर से मशीन आती है और उसका सिर फिक्स कर लेती है। पशु किसी भी तरह से अपने शरीर को हिला नहीं सकता। फिर एक होल्डर जैसी मशीन आती है, वो पीछे से उसकी पूंछ को पकड़ करके ऐसे बिल्कुल टाइट सीधा कर देती है। शरीर का कोई भी अंग अब उसका हिल नहीं सकता है। फिर छोटे छोटे जैसे पकड़ने वाले ऐसे क्लिप से आते हैं, वो दोनों कानों को पशु के पकड़ के और बिल्कुल पशु बिल्कुल असहाय अवस्था में अपने शरीर को एक इंच एक मिलीमीटर भी नहीं हिला सकता है। जब ऐसी स्थिति है कि वो हिल लो नहीं सकता है, बिल्कुल टाइट हो गया है, उसके ऊपर से जैसे हम कार धुलवाने के लिए मान लो वर्कशॉप में जाते हैं, तो कुछ कुछ वर्कशॉप में इस तरह की फैसिलिटी है कि ऊपर से ही कई जगह से पानी गिरता है और कुछ साफ करने का कपड़ा जैसा ब्रश जैसा रहता है वो साफ करता जाता है, लेकिन पानी अपने आप ऊपर से गिरता रहता है। उसके बाद जब वो धुल जाता है तो अच्छे प्रेशर से फिर पानी गिरता है, तो सारी की सारी गाड़ी पे जो लिक्विड लगा है, डिश वॉश लगा है या जो भी कार वॉश, वो सब साफ हो जाता है, फिर आगे आता है। बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन पे सारी की सारी फैसिलिटी बिल्कुल बना दी गई है, बिल्कुल व्यवस्था के साथ। ऊपर से पानी का कम से कम 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी बिल्कुल उबलता हुआ, 100 डिग्री में अगर हम हाथ डाल देते हैं तो फफोला हो जाता है, कहीं उससे गुना अधिक लेटेंट हीट जिसमें बिल्कुल निकली नहीं रहती है, लेटेंट हीट एकदम, अगर 100 डिग्री के साथ लेटेंट हीट है वो तो 300 डिग्री का काम करता है, लेटेंट हीट की ये क्वालिटी है। तो बहुत तप्त जल जिसमें लेटेंट हीट 1% भी रिलीज नहीं है, ऊपर कई जगह से होल से बड़ी बड़ी क्वांटिटी में अच्छे फोर्स के साथ प्रेशर के साथ इस पशु के ऊपर, उसके ऊपर गर्म तमतमाता हुआ तप्त जल, बिल्कुल लेटेंट हीट मान लीजिए, वो काफी देर तक गिरता रहता है, पशु रोता रहता है, कुछ कर नहीं सकता है, बंधा हुआ है बिल्कुल बुरी तरह से बंधा, वो कुछ नहीं कर सकता है। और इतना तप्त पानी उस पर आकर के रुक नहीं रहा है, गिरता जा रहा है, एक स्पॉट पर धारा आ रही है, इस तरह से कितने ही छोटे छोटे ऊपर से गिरते रहते हैं और अच्छी क्वांटिटी में गिरते रहते हैं, ये नहीं कि वो एक एक बूंद गिर रहा है, अच्छे से जैसे फुल स्पीड पे मान लीजिए आप नल खोल दें तो इतनी स्पीड से मान लो 10-15 एक ही पशु के ऊपर गरम गरम तप्त लेटेंट हीट वाले पानी के फवारे छूट रहे हैं। फिर जो स्थान अभी बच जाते हैं उसकी पोजीशनिंग चेंज होती है, फिर वहां से वो दूसरे स्थानों पर आकर गिरते हैं। जब बिल्कुल वो एंश्योर हो जाता है कि पूरा का पूरा जो उसकी बॉडी का एरिया वो कवर हो गया है, तब तक वो मशीन घूमती है या घुमाई जाती है, जो भी उसका संचालन करने वाले पशु ही हैं और कम हो गए। जब ऐसा हो जाता है, उतना होने के बाद उसकी जो खाल है ऊपर से वो बिल्कुल अलग जैसी हो जाती है, जैसे फफोले से पड़ जाते हैं, लेकिन फफोलों के ऊपर आप गरम गरम पानी डालते रहें तो वास्तव में बॉडी के अंदर ही हीटअप हो जाता है, तो वो अंदर से फिर बाहर प्रेशर करना शुरू करता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो दूसरी मशीन आती है, वो दूसरी मशीन उस खाल को खींचती है। अभी पशु जीवित है, वो मरा नहीं है। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि वास्तव में हमें भान होना चाहिए। उसके बाद उसकी खाल को खींचा जाता है, एक एक करके उसका जो अंग है पूरा का पूरा उसकी खाल से उसको अलग कर दिया जाता है। पशु की अभी मृत्यु नहीं हुई है, वो खाल हटने के बाद भी रो रहा है, जोर से चिंगार रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि वो टैनरी खोल सकते हैं, उनको लाइसेंस मिला है कि आप स्लॉटर हाउस चला सकते हैं। उसके बाद एक मशीन आती है, वो मशीन का काम क्या है कि ऊपर जो थोड़ा बहुत और रह गया है उस एरिया से उसको ब्रश से रगड़ करके बची हुई खाल उसकी वहां से भी हटा ली जाती है। उसके बाद अगली मशीन आती है, वो पशु के पेट में घुस करके उसकी आंतरिया निकालती है, यहां से वास्तव में
उसकी अब हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो बाहर मात्र चमड़ा रह जाए, अंदर से सब कुछ निकाल लिया जाता है, एक एक करके मशीन इस तरह से फिक्स रहती है कि पहले एक फिर उसके बाद हड्डियां निकलती हैं। वो जो ढांचा रह जाता है उसके बाद उस ढांचे में हवा भर दी जाती है कि कहीं ये ऊपर से प्रूफिंग ना हो जाए इस चमड़े की, नहीं तो ये बिकेगा नहीं बाजार में। और क्या क्या उस वास्तव में पशु की उस एक घंटे में स्थिति नहीं होती है, जिसको आजकल के राजा या आजकल के प्रशासनकर्ता वास्तव में लाइसेंस के द्वारा ये काम करवा रहे हैं। कलयुग के जितने दोष गिनाए जाए उतने ही वास्तव में कम है, दोषों का गुण है कलयुग। ये किसी तरह से एक पांव पर खड़ा हुआ है जो बैल, उसको थोड़ा बहुत सत्य का सहारा है जो इस समाज में मिलता है, नहीं तो कोई किसी भी तरह की शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। चारों पैर आमतौर पर टूटे हुए माने जाने चाहिए, तीन तो बिल्कुल ही नहीं है, चौथा भी बस लड़खड़ाने जैसी स्थिति में है। तो इस तरह के कलयुग में इस शरीर में हम लोगों ने जन्म लिया है, इस आत्मा ने हम लोगों ने उस तरह के कलयुग में जन्म लिया। अभी 5,000 वर्ष हुए हैं इस कलयुग को, 4,32,000 वर्ष का काल है। तो अगर 5,000 वर्षों में यहां तक पहुंचे हैं तो बाकी के 4,27,000 वर्षों में हम कहां पहुंचने वाले हैं, इसका सहज भी अनुमान नहीं किया जा सकता। कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा। वास्तव में दोष की निधि तो है कलयुग, लेकिन बहुत महान गुण भी है उसमें कि कितना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजे। इस कलयुग में जहां हम हैं सब रिस्पॉन्सिबल है इस व्यवस्था के लिए, कोई अपने आप को सफेद श्वेत नहीं घोषित कर सकता है कि मैं बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं इस स्थिति के लिए। हम सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई इनडायरेक्टली कर रहे हैं, कोई डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन व्यवस्थाओं का प्रशासन का तो जो होगा वो देखेंगे, उनके स्वामी तो आगे तैयार बैठे हैं, उनके स्वामी बिल्कुल दंड लेकर के यमराज जी महावैष्णव तैयार बैठे हैं, उनका तो जो होगा सो होगा। लेकिन सब वास्तव में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम नहीं अगर कुछ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस व्यवस्था को जोर जोर से हरिनाम की गूंज तो दे सकते हैं। अस्ति एको महान गुणान, इस गुण का तो आश्रय ले सकते हैं। कीतना देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत, कम से कम चेतना जिनकी पूरी तरह से दूषित हो चुकी है, कोई सुनेगा नहीं, उनको हरिनाम तो दे सकते हैं। तो जब तक हम हरिनाम के प्रति बिल्कुल आश्वस्त और समर्पित नहीं होंगे कि यही वास्तव में इस कलयुग का हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ एव नास्ति एव, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। इस कलयुग में धर्म नहीं है अन्य कोई। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में 3 श्लोक आते हैं, तो दूसरा जो श्लोक है उसमें कहा गया कि धर्म प्रोजिता केतव अत्र, कि वास्तव में श्रीमद् भागवत से जो कैतव धर्म है, जो तथा कथित धर्म है, जो वास्तव में हमें भगवान के चरणों तक नहीं ले जा सकते हैं लेकिन धर्म है, ये आवाज स्पीकर से आ रही है क्या? अच्छा उधर, अच्छा 9 बज गए, ठीक। तो कम से कम इन कैतव धर्मों को जिस ग्रंथ से बाहर निकाल फेंक दिया गया है, उस ग्रंथ का तो आश्रय ले सकते हैं, उस ग्रंथ का तो प्रचार कर सकते हैं। तो जब हम इस तरह का कार्य करते हैं तो वास्तव में अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, इस समाज में बाकी जितने भी हमारे संपर्क में आते हैं उन सब का भला हो रहा है। एक तरह से और भी इस कलयुग को धन्य कहा जाता है। दोष तो बहुत हैं, लेकिन धन्य इसलिए भी कहा जाता है कि भगवान स्वयं इस कलयुग में हरिनाम का प्रचार करने के लिए चेतन महाप्रभु रूप में स्वयं आए हैं, और उसी परंपरा में बहुत बड़ा भाग्य है हम लोगों का। वास्तव में अगर अपनी भाग्य की हम कल्पना करें तो क्या क्या हमने किया होगा कि महाप्रभु के काल में हम आ गए। काल में मतलब महाप्रभु के सामने नहीं, लेकिन महाप्रभु से दूर भी नहीं, कोई बहुत दूर नहीं है महाप्रभु से। स्वयं के गुरुदेव प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद चार पांच कड़ी के बाद भगवान स्वयं, महाप्रभु स्वयं। और संकीर्तन यज्ञ प्राय, जो प्राय जो यज्ञ कर रहे हैं वो संकीर्तन का यज्ञ कर रहे हैं। तो वास्तव में धर्म निरपेक्षता यही है कि सदा संकीर्तन में लग रहे, सदा ही। वास्तव में जब इस कलयुग का जो धर्म है जब उसको जीव करता है तो वो वास्तव में वास्तविक धर्म निरपेक्षता है कि और कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन जो वास्तविक धर्म है उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। आगे श्लोक में गाय की स्थिति का वर्णन है, फिर कलयुग के साथ परीक्षित महाराज की बातचीत का वर्णन है। किसी का कोई प्रश्न है या कोई डाउट, या मैंने कोई अब सिद्धांत कह दिया जो लगा हो कि नहीं नहीं वास्तव में स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी आपने बताई। हाँ जी प्रभु जी, का प्रश्न है कि गाय और बैल इतने पवित्र पशु माने जाते हैं कि वास्तव में भगवान के लिए कहा गया कि गो ब्राह्मण हिताय चा, कि वास्तव में ब्राह्मणों और गायों के हित के लिए भगवान को प्रणाम मंत्र जो है वो उनके संदर्भ में किया जाता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा। तो ऐसा कैसे हो गया कि जो कलयुग का पर्सोनिफाइड डीटी है, जो कलयुग का जो जो वास्तव में राजा है, वो गाय और बैल को प्रहार कर रहा है, और हम लोग अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो हमें कितना पाप लगता है, और उसको राज्याभिषेक हो गया 4,32,000 साल तक, उसको शासन मिल गया कि आप राज्य कीजिए। तो ऐसा कैसे हो गया, ये थोड़ी सी समाधान नहीं हो रहा है इस बात का। प्रभु जी का ये प्रश्न है कि इसका समाधान किया जाए। इस भौतिक जगत में आना ही वास्तव में बहुत बड़ा अपराध है, ये पहली बात हमें समझना चाहिए। इस भौतिक जगत में आने के बाद जो व्यवस्था का मुख्य सूत्र है वो शुद्धिकरण का है, प्यूरिफिकेशन का है, और वो प्यूरिफिकेशन होती है ह्यूमन बॉडी में आकर के। लेकिन उस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में कई तरह के लेसन जब जीव को मिलते हैं तो उसकी भोग की प्रवृत्ति शमित होती है, कुछ कम होती है। जैसे घड़ी की सुई 12 से चल करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे फिर पहुंचती है, फिर वापस चलती है। उसी तरह से इस भौतिक जगत में जो प्रोसेस है इसी तरह से चलता है। सबसे पहले धर्म जिससे सब अट्रैक्ट होते हैं पूर्ण रूप से कंप्लीट रहता है, उसकी शरण लेकर के लोग होलसेल में शुद्ध होते हैं। फिर धीरे 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 धर्म का जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, तो धीरे धीरे जो बच्चे लोग रह जाते हैं वास्तव में वो धर्म को उस तरह से रहने नहीं देते, तो वो उस तरह के एनवायरमेंट में जीवित होते हैं या जन्म लेते हैं जहां पर धर्म पूरा नहीं है, कुछ परसेंट कम हो गया। तो जो अगला युग आता है, पहले को सत्ययुग बोलते हैं, अगले को त्रेता युग बोलते हैं, उसमें और धर्म नीचे गिरता है 25%, फिर आगे द्वापर आता है और नीचे गिरता है। तो जब कलयुग शुरू होता है तो वास्तव में जो बचे लोग रह जाते हैं कोई बहुत सुकृत नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है, इन बचे हुओं को भी प्यूरिफाई करना है, वो काम तो चलेगा जो चलेगा। ये जो प्रोसेस समाज का है, ये बिल्कुल इसका समाप्त होने से पहले चौथी टांग भी टूटेगी, फिर पुनः स्थापना होगी, फिर पुनः चारों पांव पे आता है, फिर धीरे धीरे हम ही लोग उसको फिर कम करते हैं, उसकी टांगे तोड़ते हैं, और फिर दोबारा से जब साइकिल कंप्लीट होता है। तो वास्तव में परीक्षित महाराज को देना ही था, जब तक भगवान यहां थे कलयुग नहीं आ सकता था। भगवान के सामने ये सब करने का उत्साह नहीं है, पाप भगवान की पीठ पर रहता है, सामने नहीं आ सकता है शास्त्र, अधर्म भगवान के पीछे रहता है, सामने सम्मुख नहीं आ सकता है। तो ये वास्तव में उसका काल है, उसका समय है, ये उसका शासन का समय है, तो उसको शासन इसमें करना ही है। परीक्षित महाराज ने उसको जो स्थान दिए थे वो स्थान उस समय थे ही नहीं। परीक्षित महाराज ने कलयुग ने आकर के उनके चरणों में विनती की, पांव में पड़ गया। तो क्षत्रिय का यह धर्म होता है कि कोई अपनी संरक्षण में अगर आ जाए, शरणागत हो जाए, तो उसकी हत्या नहीं करता। परीक्षित महाराज तो मारने के लिए कृत संकल्प थे कि इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो तो डिप्लोमेट बोलते हैं या क्या, पॉलिटिकली इंक्लाइंड, एक वो पूरा प्रोसाइडिंग बीपी है जो कलयुग का, आगे 4,27,000 और शासन करेगा, तो कितना उसका माइंड कलयुगी होगा, वो स्वयं कलयुग का प्रोसोनिफाइड डीटी है। तो वो तो पांव में पड़ गया परीक्षित महाराज के, तो शरणागत हो गया, तो उसकी हत्या नहीं करेंगे। तो उन्होंने फिर धीरे से कहा कि वास्तव में मेरा समय आ गया है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो स्थान देना चाहिए, एक गांव दे दीजिए, एक शहर दे दीजिए, एक नगर दे दीजिए, मैं कहां रहूं, मैं भी तो राजा हूं, आप राजा हैं, मैं भी राजा हूं, आप संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट हैं, लेकिन मेरा समय आया, मुझे कुछ थोड़ा स्थान तो दीजिए। तो परीक्षित महाराज को भी बात शास्त्रोचित लगी कि ठीक है, कलयुग का समय आया तो इसको थोड़ा कंसेशन तो देना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत विचार किया कि इसको कहां पर वास्तव में दिया जाए स्थान, कि जहां पर ये रहकर भी ना रह पाए। अगर किसी को ये कहा जाए कि 30 फरवरी को आपको विवाह होगा, तो क्या उसका कभी विवाह होगा? तो उसी तरह का मंतव्य मन में रखकर परीक्षित महाराज ने उनको 30 फरवरी जैसा कॉम्बिनेशन दे दिया कि ठीक है, आप यहां रह जाओ। तो चार बातें जो उन्होंने कही, आप चार स्थानों पर रह सकते हैं, जहां पर लोग मद्यपान करते हैं, नशा करते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, आप वहां रह जाइए। कोई उत्साह नहीं आया कलयुग में, कोई करता ही नहीं है, कहां जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जहां पर मांस भक्षण हो रहा है, अरे पशु को टच करने पर तो मुझे मारने पर तुले हैं, मांस भक्षण करने वाले कहां मिले, कोई पॉसिबल, लेकिन स्थान दे रहे हैं आपको, दो स्थान मिल गए। आप ये नहीं कह सकते आपके विवाह की तिथि निश्चित नहीं गई है, विवाह की तिथि निश्चित कर रहा हूं, दो स्थान दिए। तीसरा स्थान, जहां पर कोई जुआ या इस तरह का कार्य हो रहा, आप रह सकते हैं वहां पर। कोई उत्साह नहीं हुआ, कोई स्थान है ही नहीं वास्तव में परीक्षित महाराज के राज्य में जहां पर इन तीनों। फिर चौथा दिया कि जहां पर अवैध स्त्री संघ या अवैध पुरुष संघ होता है, आप वहां रह सकते हैं। फिर भी कोई स्थान नहीं मिला, बहुत नेगिजिबल, बहुत माइनस है एक स्थान। वहां से एम्प्लीफाई नहीं हो सकता था, वहां से वो प्रॉस्पर नहीं हो सकता था। तो वो पड़ा रहा पांव में कि वास्तव में आपने स्थान तो दिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं, कोई जगह नहीं है। तो फिर एक स्थान परीक्षित महाराज ने कहा, जहां से वास्तव में कली को एक उंगली रखने की, बोलते ना कि उंगली पकड़ करके आप आगे पूरा पूछा पकड़, क्या क्या कहते हैं वो सब पकड़ लेते हैं। तो एक स्थान फिर परीक्षित महाराज ने दे दिया कि ठीक है तुम्हारा समय है तो कुछ ना कुछ, जहां भी स्वर्ण, या हमारे आचार्य कहते हैं कि स्वर्ण के अभिप्राय से अवैध अवांछित धन का संचय होता है, आप वहां रह सकते हैं। शब्द शास्त्र में स्वर्ण दिया है, लेकिन स्वर्ण के उपलक्षण से जो साथ में और भी इंक्लूड कर लिया वो सब अवैध संचय, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, अब तो खैर व्हाइट मनी भी ब्लैक मनी, क्योंकि राजा भी ऐसे ही है प्रजा भी ऐसे ही है, तो ब्लैक भी व्हाइट ही जैसा है या व्हाइट भी ब्लैक ही जैसा है। लेकिन जहां भी अवैध संचय हो रहा है, जरूरत से अधिक धन का संचय हो रहा है, आप वहां रह सकते हैं। तो उस समय भी प्रवृत्ति नहीं थी, समाज के जो तीन अंग थे, चार में से तीन, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और ग्रह और सन्यासी, ये लोग कोई कमाई उमाई नहीं करते थे, वो समाज का मार्गदर्शन, जो वन चौथाई, जो वन फोर्थ जो रह जाता था ग्रस्तों का समाह, उनका मार्गदर्शन वास्तव में किया करते थे। तो उनको जो ग्रस्तों का ये नियम था, उनके ऊपर ये कर्तव्य था कि वो बाकी जो तीन चौथाई हैं, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, उनका पालन करें। तो इसलिए दान वास्तव में देने की प्रवृत्ति तो हो नहीं होता था, संचय नहीं होता था। ये जब ब्राह्मण थोड़ा थोड़ा निष्कुल थोड़ा गिरने शुरू हुए, कलंकित होना शुरू हुए, तो फिर ग्रस्तों ने भी अपने हाथ रोकने शुरू कर दिए, और जब हाथ रोकने शुरू कर दिए तो अब संचय भी होता है, खूब संस्कृतिफिकेशन भी हो रहा है। तो वास्तव में जो राज्याभिषेक हुआ है वो राज्याभिषेक तो होना ही था काल के अनुसार, लेकिन उसमें जो मुख्य कारक बना, जो बहुत तेजी से जो सत्ता फैल रही है, वो वास्तव में ब्राह्मण इस समाज से बिल्कुल लुप्त प्राय हो गए हैं। ब्राह्मण का अर्थ उस ब्राह्मण परिवार से नहीं है, रामनिवास शर्मा, दीनदयाल वर्मा, वो नहीं, ब्राह्मण का अर्थ वो नहीं है, गुण कर्म विभाग शाह। तो वास्तव में ये मिलना था, वो उसका समय था तो मिला, और एक तरह से देखा जाए तो चाहे कलयुग की बात करें या माया देवी की बात करें, सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि शुद्ध करने पे लगे हैं। जब व्यक्ति कई बार बहुत मांस खा करके या इस तरह का दूसरे दुर्व्यवहार करके बिल्कुल देखता है कि नहीं इसमें किसी तरह का सुख नहीं है, तो वास्तव में वो मुड़ता है, वो डायरेक्ट होता है। उस समय अगर कोई भक्त हरिनाम करता हुआ या कुछ उसको प्रीच करता या कोई बुक दे देता है कुछ करता तो अट्रैक्ट होता है। तो ये सारा का सारा जो व्यवस्था रची गई है इसका मुख्य शुद्धिकरण ही अभिप्राय है। तो जो जीव आज भी शरीरों में है, मनुष्य में, तो वो वास्तव में बहुत उन्नत नहीं है, लेकिन उनकी शुद्धिकरण का भी उपाय है कि बहुत अधिक समय तक तो शरीर नहीं रहेगा, तो कम से कम समय में क्या उनको औषधि दी जाए कि जिससे वो शुद्ध हो जाए। अगर आयु कम हो रही है, 1,00,000 वर्ष थी सत्ययुग में, फिर 10,000 वर्ष, 1,000 वर्ष, 100 वर्ष, 100 भी कोई नहीं जीता, तो उसी के अनुपात में धर्म भी, भगवान का चरण प्राप्त करना भी सरल होता जा रहा है। तो कलयुग में वास्तव में भगवान के चरणों में प्रेम बहुत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अस्ति ही एको महान गुणान, बस एक ही महान गुण है, अगर इस महान गुण को छोड़ दें तो कलयुग में दोष ही दोष है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो महान गुण क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे
देव कृष्ण श्या मुक्त संघा परम प्रदे। वास्तव में ये आधार है इस कलयुग में भगवान के चरण प्राप्त करने का, हरि नाम जब कीर्तन ये आधार है। तो जो इस आधार में जितना गहरा उतरता जा रहा है, वास्तव में उस पर कली का प्रभाव उतना ही खत्म होता जा रहा है। याद रखना चाहिए कि दो चीजें हैं, माया अलग है और कलयुग का प्रभाव अलग है, इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। माया सतयुग में भी है, त्रेता युग में भी है, द्वापर युग में भी है, कलयुग में भी, क्योंकि माया इस भौतिक जगत में पांव रखते ही वास्तव में माया का आश्रय रह जाता है। लेकिन कलयुग में माया को प्रभावित करने के लिए जो एक बहुत क्या बोलते हैं, मैं तुरुप का इक्का जिसको बोल सकते हैं, तुरुप का इक्का समझ रहे हैं ना, एस कार्ड, वास्तव में जिससे सबसे सब कुछ जीता जा सकता है। तो माया का जो तुरुप का इक्का है वो कलयुग के चार स्थान हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये कहा कि सबसे पहले कलयुग का प्रभाव खत्म करना है, चार नियमों का उत्साह के साथ पालन करना है। क्योंकि ये जो नियम का पालन ना करने का अर्थ है कि माया या ये चार चीजें कब हमें माया की गोद में ले जा करके और सुला देंगी, कुछ तय नहीं है। कभी भी हम जा करके वहां सो सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो माया से दूर रहने के लिए कलयुग में प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्य ने ये चार नियम दिए हैं। क्या चार नियम हैं? किसी भी तरह का कोई भी नशा पान नहीं करना जिसमें चाय और कॉफी भी सम्मिलित है, वो भी माइल्ड इंटॉक्सिकेटेड होते हैं। मांस भक्षण नहीं करना, अंडा भी शामिल है, वो भी लिक्विड होता है, लिक्विड फ्लैश बोलते हैं उसको। किसी भी तरह का जुआ इत्यादि सट्टेबाजारी नहीं करनी है, उसमें शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट भी सम्मिलित है, चाहे डायरेक्ट ट्रेडिंग है या इनडायरेक्ट ट्रेडिंग है, डे ट्रेडिंग है या लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग है, किसी भी तरह की ट्रेडिंग उसमें शामिल है। और चौथा, अवैध स्त्री संघ या अवैध पुरुष संघ, संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त किसी भी तरह का अगर संघ दूसरे के साथ किया जाता तो उसको अवैध कहा जाता है। ये वास्तव में फाउंडेशन है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, ये भूमि है, ये आधार है जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होगी। और जो वास्तविक जो ऊंचाई है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम पर, जिसका फाउंडेशन वीक है, वो किसी भी मंजिल से इमारत गिर सकती है। मान लीजिए अगर 25 मंजिल तक चढ़ाना है किसी बिल्डिंग को और फाउंडेशन में एक उसका 1/4 एरिया वीक है, तो क्या गारंटी है कि 24 फ्लोर बन जाने के बाद भी बिल्डिंग नहीं गिर जाएगी? बस पहुंचने वाले हैं और बिल्डिंग नहीं गिर जाएगी। इसको सुरक्षित रखना चाहिए, इन चारों स्तंभों को। हमारे आचार्य कहते हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम को क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए मुक्त होकर के समाज में विचरण करना चाहते हैं इस कलयुगी समाज में, तो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। इन चार नियमों का पालन करें, इस कलयुग में हमें टच नहीं करेगा, माया का प्रभाव रहेगा। अब जो माया का प्रभाव पड़ेगा
वो मुख्य तौर से सटल रह जाता है, ग्रॉस नहीं होता है। और उसको फिर हमारे आचार्य तीन रूपों में बांटते हैं, पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा की भावना। कि इन तीनों से भी उसी तरह से बचना है, बल्कि ये तो और ज्यादा ग्रेव है, पूजा लाभ और प्रतिष्ठा से दूर रहने को बचना चाहिए। जब इस तरह की व्यवस्था होने लगती है, जीव का हृदय जब बाहर से भी और अंदर से भी जब शुद्ध होने लगता है, तो वास्तव में वो बहुत तेजी से प्रगति करता है। नाम आश्रय करिया जतने करी ठाकुर अपने काजे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नाम आश्रय लिया, ये सब काम करने के बाद करना क्या, एक्टिविटी क्या करनी, ये तो एक्सटर्नल हो गया, करना क्या है? नाम आश्रय करिया जतने करी, फिर प्रयास करना है ठाकुर अपने काजे, अपने अपने जो काम है, स्थान स्थित श्रुति गतान तनुवांग मनु भी अपने अपने काम करते रहने, कथा नाम सुनते रहना है, बस यही प्रोसेस है। अपने आप सब शुद्ध हो जाएगा। और कोई प्रश्न है किसी का? जी प्रभु जी। कह रहे हैं कि कई गोरक्षा करने की संस्थाएं होती हैं, तो वो वास्तव में क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्या बैठे बैठे हरे कृष्णा करते, तो आओ थोड़ा गायों की रक्षा करो, वास्तव में तो ही होगा। तो कैसे इस बात को समझा जाए कि कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए? सबसे पहला तो प्रभु जी ये समझ लेना चाहिए कि जैसे जैसे आगे समय चलता रहेगा, जैसे जैसे आगे समय बढ़ता रहेगा, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग का बहुत सुंदर निरूपण किया हुआ है। मैं सुंदर इसलिए कह रहा हूं कि वो पढ़ने के बाद हिल जाएंगे। उसमें तीन चीजें मुख्य तौर पर लिखी हुई हैं, जो होने वाला है, जो प्रभावित होने वाला है समाज, वो किन तरह की तीन चीजों से प्रभावित होने वाला है। सबसे पहला जो प्रभावित होने वाला है दुर्भिक्षा। दुर्भिक्षा का मतलब क्या है? कि भिक्षा मांगे भी नहीं मिलेगी। अभी भी देखा जाता है, प्राय शीशे बंद कर लिए जाते हैं कोई मांगे तो चौराहों पर, दुर्भिक्षा बिल्कुल मांगने का मतलब है मिलेगी नहीं। अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब वृष्टि होने वाली नहीं है, बहुत बहुत बरसात नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो पेट नहीं भरेगा, जब पेट नहीं भरेगा तो भीख मांगेंगे तो मिलेगी नहीं। और तीसरा सबसे जो भयंकर इसके ऊपर बोलते हैं, जैसे आइसिंग हो रही है केक के ऊपर, वो आइसिंग होगी टैक्सेस के फॉर्म में। वास्तव में जितना कमाएगा मनुष्य इस युग में, कलयुग में, उसका प्रायः लगभग सारा का सारा किसी ना किसी टैक्स में चला जाएगा। तो कर पीड़िता, तीन लक्षण आए हैं, कर पीड़िता, कर से बुरी तरह से पीड़ित होगा। एक तो पैदावार नहीं हो रही है, ऊपर से जो थोड़ी बहुत कमाई हुई तो कर पीड़िता। कई कई तरह के नए नए टैक्सेस स्कीम होते हैं, बार बार निकलते हैं, कर वर दे करके किसी तरह से अगर कुछ बच गया तो अपना पेट पालेंगे कि भीख देंगे? वो तो शीशा का है, शीशा बंद करने के लिए भी नहीं। तो ये वास्तव में लक्षण है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि गोरक्षा के लिए बहुत कार्य करना चाहिए, गाय को संरक्षण देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो मुख्य सेवा कलयुग में गाय रक्षा नहीं है, जो मुख्य सेवा है वो हरि नाम करने की है। जब तक हरि नाम नहीं होगा तब तक जीवे दया नहीं आएगा। जीवों पर जो रियल कंपैशन है वो हृदय जब तक सॉफ्ट नहीं होता है तब तक नहीं आता। मैं देखता हूं जो तथाकथित कई सारे ऐसी गौशालाएं हैं, वो गौशालाओं के जो स्वामी हैं वो एसी रूम में बैठे रहते हैं, धन आता है तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है, चारा आता है तो उनको कोई प्रसन्नता नहीं है, कारण नहीं बताऊंगा। तो उस तरह की स्थिति में भी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अगर वास्तव में अगर गायों को पालन करके उसकी सेवा कर सकते हैं, या जहां जहां गायें सही ढंग से पालित हो रही है उनकी सेवा हो रही है दूध या किसी अन्य लाभ से नहीं, कई गौशालाएं ऐसी हैं जहां पर दूध की इच्छा ही नहीं है, बूढ़ी गायें हैं, बीमार गायें हैं, उनको ला करके सेवा की जाती है, वास्तव में वो गो रक्षा है। अगर एक ग्वाला है वो दूध के लिए 50 गायें रखता है वो अलग परिस्थिति है, लेकिन सबके लिए चाहे कोई ग्वाला है या नहीं है उसके लिए परम ग्वाले का आदेश है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, तो उस परम ग्वाले की बात माननी है, हरे नाम करना। हरे कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। आपका कोई प्रश्न है? प्रभु जी का प्रश्न है कि कलयुग तब तक नहीं आ सकता था जब तक भगवान कृष्ण थे, तो अब तो महाप्रभु स्वयं जो भगवान कृष्ण है वो आ गए हैं, तो कलयुग का प्रभाव क्यों है, कहां है प्रभु जी कलयुग का प्रभाव? जहां महाप्रभु की पालन आदेश का वर्णन वहां आपको कलयुग का प्रभाव नजर आता है, तो जहां भगवान स्वयं कलयुग से बचाने के लिए शस्त्र लेकर के आए हैं, कौन सा शस्त्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते, जब 4000 युग पास हो जाते हैं उसके बाद महाप्रभु आते हैं। हर कलयुग में महाप्रभु नहीं आते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग महाप्रभु आएंगे, फिर ऐसा नहीं होता है। जब 1000 सतयुग 1000 त्रेता 1000 द्वापर और 1000 कलयुग निकल जाते हैं, इन सब के निकलने के बाद वास्तव में महाप्रभु आते हैं। तो कोई बहुत मैं जैसे कह रहा था कि क्या क्या कल्पना करेंगे अपने भाग्य की कि जो भगवान कलयुग में, हमारा जन्म कहां हुआ है? कलयुग में, लेकिन जिस कलयुग में हुआ है महाप्रभु 4000 कलयुग के बाद आते हैं, उस कलयुग में हमारा जन्म हो गया किसी तरह से। और यही नहीं, महाप्रभु को वास्तव में जो आंदोलन प्रसारित करना था उस आंदोलन में आ गए, उस आंदोलन में आकर के जो महाप्रभु ने शस्त्र दिया वो शस्त्र अपने हाथ में ले लिया, अब क्या करेगा कलयुग? तो कोई प्रभाव नहीं है कलयुग का। आपका कुछ प्रश्न था प्रभु जी? मीटिंग करनी पड़ेगी ब्रह्मा जी के साथ हो तो पता लगेगा। तो वैसे ये सुख का विषय है कि कलयुग में मानव ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये दुख का विषय है? ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है प्रभु जी, वास्तव में सेवा है हमारी, हमारी सेवा भगवान ने बढ़ाई है। प्रीचिंग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, मार्केट फैली हुई है, इसका मतलब ये तो मार्केटिंग फैली हुई है, हाथ में ले जाकर के प्रोडक्ट और किसी तरह से बेचना है, तो जो जितना सेल करके आएगा वो महाप्रभु की माला का उतनी जल्दी पुष्प बनेगा। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भगवान के गले का हार बनने का अर्थ होता ये है कि वास्तव में एक 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 सहयोग करना, पहले स्वयं और फिर दूसरा, दूसरे का उपचार। कि स्वयं वो क्या कहा महाप्रभु ने कि पहले फिर उसके बाद उपकार, वो क्या कहा है, जन्म सार्थक करी, पहले अपना जन्म सार्थक करना है, बाकी पॉपुलेशन को छोड़ते हैं एक मिनट के लिए, पहला जन्म सार्थक करी, अपना भजन सुबह जो 2-3 घंटा है वो जितना मन लगा के हो उतना करना चाहिए। साधना अच्छी होती है तब वास्तव में प्रचार होता है, अगर साधना अच्छी नहीं है तो प्रचार में प्यूरिफाई नहीं कर सकते, खुद भी नहीं हो सकते, दूसरे को भी नहीं कर सकते। तो मार्केट बड़ी हुई है प्रभु जी, प्रोडक्ट बेचना है अब आपको, तो अच्छा अगर ज्यादा ह्यूमन बीइंग, पशुओं को थोड़ी बताएंगे, उनको थोड़ी सिखा सकते हैं, ठीक है। और किसी का तो कोई प्रश्न नहीं, हाँ माता जी, ब्राह्मण क्यों गिरते जा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आज के ब्राह्मणों की स्थिति के बारे में बताना बाकी है। क्या नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण, ये ही आप देख लीजिए बताना क्या, लेकिन क्यों गिरे हैं उसके बारे में हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ब्राह्मणों की जीवा पर सरस्वती वास करती है। जो वास्तव में ब्राह्मण होता है उसकी जीवा पर सरस्वती का वास होता है। ब्राह्मण का अर्थ ये होता है कि वो गुरु से एक एक स्थान पर अपने आप को सदा रखे रखता है। ब्रह्मा जानाति इति ब्राह्मण, जो सदैव ब्रह्म को जाने रहता है, भगवान को जाने रहता है, भगवान से दूर नहीं होता, वो वास्तव में ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो उसको उस स्थिति में रहने के लिए कुछ क्वालिटीज का बेस बना करके उन पर खड़ा होना पड़ता है, कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तो जो प्लेटफॉर्म की जो क्वालिटी है वो शास्त्र में लिखी है, क्षमा दमा तप शौचम आस्तिक्यम आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम सत्यम, इस तरह से कुछ ब्राह्मण की क्वालिटी है कि वो अपनी इंद्रियों का मन का संयम करता है, दमन करता है, शौचम सदा शुच रहता है मन से भी बाहर से भी, आस्तिक्यम सदा आस्तिक्य होता है, सदा भगवान का भक्त होता है, ज्ञानम शास्त्रों में सदा उसका विश्वास होता है, विज्ञानम, ये विज्ञान और ज्ञान को थोड़ा समय लेना चाहिए, जो शास्त्र अनुभूत है उसको ज्ञान बोलते हैं, जो आत्म अनुभूत है उसको विज्ञान बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, कि विज्ञान शास्त्र अनुभूत नहीं हो सकता, विज्ञान आत्म अनुभूत होता है। इसका मतलब कि जितना वो अपने ऊपर रियलाइजेशन एक बात को विचार करता है, मनन करता है, शास्त्र में की हुई बात को कही हुई बात के करीब पहुंचने का अपनी रियलाइजेशन से प्रयास करता है उसको विज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञानम विज्ञानम सत्यम, बिल्कुल सत्य पर आश्रित रहता है। तो इस तरह जो कुछ क्वालिटी जो शास्त्र में लिखी है इसके प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा है उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। अगर कोई नहीं खड़ा हो पा रहा है तो उसको ब्राह्मण कहना चाहिए। भगवान ने कहा कि गुण कर्म विभाग शाह, कि गुण, गुण तो मैंने बता दिए, कर्म, ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं वास्तव में, वेद पढ़ाना वेद पढ़ना, दान देना दान लेना, यज्ञ करना यज्ञ कराना। तो ये सब काम में जो लगा हुआ है इन गुणों पर आश्रित है उसको वास्तव में ब्राह्मण माना जाता है। तो जो इस स्तर से नीचे गिर रहे हैं, आपने कहा कि उनके गिरने का मुख्य कारण क्या, तो मुख्य कारण ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, आचार्य लोग बोलते हैं कि उनकी ही जो इस तरह से स्थापित है, तो उनके जो पुत्र होंगे, उनकी जो संतानी, क्योंकि उसी तरह के मेंटल स्टेट में रहते हैं, तो जब कभी संतान उत्पत्ति होगी तो उसी तरह का जीव अट्रैक्ट करते हैं, वो भी इसी तरह से होता है, और वो भी इसी तरह का काम में लगते हैं, इस तरह के गुणों में आगे रहते हैं। तो इस तरह से ये माना जाएगा कि जो सही ब्राह्मण है उनका पुत्र भी ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि वो उस तरह की क्वालिटी, उस तरह के एनवायरमेंट में रहेगा। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, ये कहां से शुरू हुआ वास्तव में, कि जब वाणी सरस्वती पे है और उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी को गलत ढंग से अभिशाप दे दे या श्राप दे दे, ये परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण के बच्चे ने श्राप दे दिया था, उस पर अध्याय आने वाला है, शायद इससे अगला अध्याय है। हमारे आचार्य कहते हैं, शायद कृपा जी ने भी तात्पर्य में लिखा, कि उस दिन से ब्राह्मणों का पतन शुरू हो गया, क्योंकि जो वैष्णव है वो ब्राह्मणों से नीचे नहीं होता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये शरीर के गुण है वास्तव में, और वैष्णव ये आत्मा का गुण होता है। तो शरीर बड़ा होता है या आत्मा, आत्मा के लिए शरीर मिलता है या शरीर के लिए आत्मा होती है, आत्मा को शरीर मिलता है ना शुद्ध होने के लिए। तो जो अभी भी शरीर में है वो वैष्णव को अगर अभिशाप देगा तो अभिशाप तो लगेगा, क्योंकि उसकी वाणी में सरस्वती बैठी है, लेकिन क्या वो आगे कुछ करने के योग्य रह जाएगा? अगर उसको इतना भी स्थापित करने में नहीं बुद्धि है कि किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है, तो वहां से वास्तव में ब्राह्मणों का डाउनफॉल शुरू होगा। और इस तरह से डाउनफॉल शुरू हो गया कि शास्त्र में एक जगह पे ये वाक्य आता है, अगर ब्राह्मण बैठे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, वांछा कल्पतरु वेचा कृपा सिंधु भय वेचा, कि ब्राह्मण परिवार में कलयुग में जो जन्म लेंगे, मैं नहीं कहूंगा, शास्त्र कहता कि वास्तव में वो डीमन होते हैं, पिछले जीवनियों में डीमन होते हैं तो भी ब्राह्मण परिवार में, ये शास्त्र का वाक्य, श्रीमद् भागवत का वाक्य है। तो उस पर बहुत गर्व नहीं करना चाहिए कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में, क्योंकि जन्म से तो कभी भी शास्त्र में वर्णन है ही नहीं। शास्त्र वर्णन कर रहा है गुण और कर्म के आधार पर, तो अगर गुण और कर्म से बात ना करके और जन्म पर सिद्धांत लगा रहे तो वो तो ऐसे ही गलत है। तो इस तरह की गलत प्रवृत्ति का जो पिता है वो अट्रैक्ट उसी तरह के जीव को कर सकता है जो इस तरह के भाव को पोषित करना चाहता हो। तो शास्त्र कहता है जो डीमन वास्तव में जन्म ले रहे हैं वो ब्राह्मण के परिवार में ले रहे हैं, तथा कथित ब्राह्मण जो जन्म से माने जाते हैं। यानी मैं इस पर ज्यादा नहीं जाता हूं। हमारा ये आपका प्रश्न था कुछ, पहली बात तो दोनों में मुझे तालमेल नजर नहीं आ रहा है। पशु को मर्सी करके नहीं मार रहे हैं वो लोग, उस पर दया नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। तो जो पशुओं का निरीह वध है वो तो कदाचित पूरी तरह से कलयुग के आश्रय में है, उसके बाद बात ही नहीं करनी है, वो तो समझ में आ गया, वो तो कलयुग का पूर्ण रूप से, वो तो फ्लैग लेकर के चल रहे हैं कलयुग का। लेकिन जहां पे मर्सी किलिंग की बात है कि कोई आदमी बहुत दुख भोग रहा है और उसको मार दें, एक बात समझ लेना चाहिए कि जो कर्म फल है वो मार देने से समाप्त नहीं होते। किसी को मार दें कि ये बहुत बेचारा दुख भोग रहा है या इसको ये हो गया वो हो गया, इंजेक्शन लगा करके इसको सुला दिया जाए, ये ठीक नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। मर्सी किलिंग, उसके कर्म थोड़ी समाप्त हो जाते हैं, कर्म समाप्त होते हैं मात्र एक चीज से, कर्माणि निर्दहति किंतु क्या भक्ति भाजाम, भक्ति में जब आते हैं तो कर्म वास्तव में नाश होते हैं, समाप्त होते हैं, नहीं तो ये कर्मों का सिलसिला चलता ही रहता है। तो किसी को मार देने से वर्तमान में शरीर तो उसका हमने ले लिया, लेकिन उसके कर्म अभी उतना भोग करना है तो आगे भोगेगा, आगे तो उसको भोगना है क्योंकि उस तरह के कर्म किए हुए हैं। समझ रहे हैं? श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री प्रभुपाद की निदाय गौर प्रेमानंद।